हमने देखा कि हिदायत तो सिर्फ इन्हीं को मिल सकती है, तो अब इनमें बनने के लिए फिर अगर नहीं है तो फिर कोशिश करें, और अगर हैं तो फिर देखें आगे कि इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं। कुछ क्वालिटीज यहां पर कुरान ने बता दी। पहली, अल्लदीना, इफ कनेक्टिंग नाउन है कि मुत्तकी वो हैं, अल्लदीना वो लोग, युमीनून जो ईमान लाते हैं, बी साथ अलगैब गैब के, युमीनूनों ने में वाओ नून जो है वो जमा का है, और या शुरू में आ गई थर्ड पर्सन के लिए होती है, तो वो लोग युमीनूना वो ईमान रखते हैं, बिल गैब और उर्दू में तो गैब कहते हैं, वह और युकीमूना वो कायम करते हैं। अब ये कायम करना भी हम उर्दू में बोलते हैं युकीमुना, उससे सलात का माना आप जानते हैं, नमाज को कहते हैं। वह और मिम्मा, मिम्मा का लफ्ज आप इसको ब्रेक करें, मिन और मा दोनों को मर्ज कर दिया तो मिम्मा ये बन गया, मिम्मा अरे आप मिन मा कहना होता तो बहुत मुश्किल होता है, तो मिम्मा आसान हो गया। मिन का माना होता है से और मा जो, तो अब मीम माँ बन गया, तो क्या उसमें से जो रजक ना हूं, अब रजक, रजक जैसा कुछ लफ्ज है उर्दू में, रिज्क। अच्छा अब इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक करें, रजक और ना और हूं, रिज्क दिया, ना का माना होता है हमने, नून अलिफ ना आ जाए अगर इजाफी, वो इस वर्ड का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ अटैच्ड है इसके साथ, हमने, और होम एक प्रोनाउन है, एक जमीर है जो साथ अटैच हुई हुई है, उनको होम उनको देम कमान, युन्फिकून, युन्फिकून इनफाक से, नून फा कॉफ इसका रूट है, और आप देखें इसी से इनफाक भी बनता है, इसी से ये वर्ब बना युन्फिकून। मैंने आपको क्या बताया, या शुरू में आ गई तो थर्ड पर्सन है वो, इनफाक से, इनफाक फी सबीलिल्लाह आप हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, खर्च करना फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, तो इनफाक है खर्च करना, खर्च करते हैं। वाओ नून हमें एंड में क्या बता रहा है, ये जमा है, वो खर्च करता है नहीं करते हैं, क्योंकि ये जमा का सीगा। अब यहां पर आप आयत नंबर 4 तक मुत्तकीन की ही क्वालिटीज पढ़ेंगे, 6 क्वालिटीज अल्लाह ताला ने बयान कर दी। उनकी पहली क्वालिटी क्या है, युमीनूना बिलगैब, वो ईमान लाते हैं गैब पर। अब ईमान लाना क्या चीज होती है, ईमान का मतलब लिख लें, तस्दीकुन फिल कल्ब प्लस इकरारुन बिलिसान प्लस अमल बिल जवारे, क्या मतलब तस्दीक उन बिल कल्ब, कल्ब से दिल से तस्दीक करना, दिल से मानना, अगर दिल से नहीं माना तो फिर वो ईमान नहीं है, और सिर्फ इतना काफी नहीं, इकरार उन बिल्लिसान जुबान से इकरार भी करना। देखिए अगर दिल मान रहा है जुबान पे इकरार नहीं है तो भी ईमान नहीं, और अगर जुबान मान रही है दिल में नहीं है तो भी मुनाफ़क़त है, तो भी ईमान नहीं है, ठीक है। अब दिल से मानता था फिरौन लेकिन जुबान से उसने नहीं मान के दिया, इसी तरह मुनाफिकीन जुबान से मानते थे दिल में उनके तस्दीक थी ही नहीं, और इसका लाजमी नतीजा होगा अमल बिल जवारे, इसकी अमली फॉर्म, इसका इजहार, क्योंकि अब जुबान से बोल दिया दिल में भी तस्दीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो चीज दिल में ईमान हो, दिल के अंदर तस्दीक हो उसकी, वो अमल में ना आए, तो अमल बिल जवारे तब पूरा मुकम्मल ईमान बनता है। तो ईमान का सिंपल मतलब तो मान जाना है, लेकिन मानना कैसा कि दिल भी माने जुबान भी माने और सारे आज़ा भी उसके साथ उसकी अमल में लग जाए। अब क्या है देखें, यहां पे कहा गया गैब पे ईमान, गैब यानी जो चीजें, गैब क्या होता है वो चीजें जो अकल से भी नहीं आप पा सकते और अपनी फाइव सेंसेस से भी नहीं आप पा सकते। यानी अकल कहीं रिसर्च करके इंसान कहीं उससे वो पा नहीं सकता उसको, ना ही इंसान तजर्बे से पा सकता है। ठीक है, वो इंसान की सेंसेस से छुपी हुई चीजें हैं। जब तक डिवाइन इंसान को कोई यानी अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई नहीं मिलती, अंबिया के नहीं बताते, उस वक्त तक इंसान को खबर नहीं होती। ये होता है ईमान बिलगैब। ठीक है, तो अब ईमान बिलगैब पहली चीज है, इसलिए पहली चीज है, ये बेसिक बात है कि अगर ईमान बिलगैब ही नहीं है तो गैब में कौन कौन आता है? अल्लाह ताला भी तो गैब है, हमने तो नहीं उसको देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अम्बिया कराम वो हमारे सामने तो नहीं आए, ना कुरान हमारे सामने उतरा है, ना फरिश्ते हमें हमने कभी देखे हैं, ना हमने जन्नत जहन्नुम कभी देखी है। सब गैबी उमूर है ना। ईमानियात आपको पता है ना, छह ईमानियात है। अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर, रसूलों पर, यौमल आखिर पर, और कदर पर। वल कदरी खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह ताला, कि अच्छी और बुरी कदर अल्लाह ही की तरफ से। ये सब ही गैब के उमूर है ना, कदर भी गैब है, एक आखरत का दिन भी है, ये सब गैबी उमूर है। तो असल ईमान है ही गैब पर। देखिए, अगर कोई किसी को कोई चीज नजर आ जाए तो फिर तो मान जाना वैसे ही बहुत आसान है। उसको तो देख के फिरौन भी मान गया था कि अब मैं आमंतु बी रब्बी मूसा व हारून। उसने डूबते हुए जब उसको गैब का पर्दा हट गया, उसको आगे ली दुनिया नजर आने लगी, मरने लगा बिल्कुल, तो कहता अब मैं ही मान लाता हूँ रब पे मूसा और हारून के। तो ऐसे ईमान का कोई फायदा नहीं है, तो फिरौन भी ले आया था। ईमान बिलगैब ही तो जरूरी है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि ईमान बिलगैब का मतलब ये है कि अब आपको ये कहा जा रहा है कि आप दीन में बिल्कुल यानी आप कोई चीज भी का तकाजा नहीं कर सकते और कोई चीज आपको पता ही नहीं हो और आप ऐसे ही बस मानने शुरू जाए। अल्लाह ताला ने इतनी निशानियां इन चीजों की रखी हैं कि उनके जरिए तो अल्लाह ताला तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वैसे इंसान ये कहे कि अल्लाह को देख के मैं मानूंगा, प्रूव हो ये यहां पे, कोई आके मुझे बताए इस तरह से कि सामने दिखा दे सब कुछ, तो कुफारे मक्का भी तो यही कहते थे। आप ये करेंगे तो फिर ऐसे होगा, हमें क्या पता फरिश्ता आके आपको दिखा रहा है बता रहा है, हम तो हमने तो नहीं फरिश्ते को देखा, हमें दिखा है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो सरदार थे बनी इसराइल के, उन्होंने कहा था हम आगे पढ़ेंगे ना, लन नुमिना लका हत्ता नर अल्लाह जारतन, हम तो नहीं मानेंगे जब तक अल्लाह ताला को सामने ना देख ले। इसका मतलब ईमान का मतलब ये नहीं होता कि आप देखें तो फिर माने। अक्सर लोग आप कहना शुरू होगा हमने तो देखा ही नहीं, हमें क्या पता, यानी शक क्या फिर। तो ईमान क्या होता है इसको आप, मैं अब एक मिसाल आपको देती हूँ, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। आप मसलन कहीं पर अंदर बैठे हैं, बाहर से कोई बंदा आता है और आके आपको कहता है कि जी बाहर आग लगी हुई है। अब आप कहते हैं आग लगी हुई, ये कैसे हो सकता है आग लगी हुई, ना हमें कोई स्मेल आई, ना हमें कोई चीखों की आवाज आई, ना हमें किसी का कोई शोर पता चला, तो ये कैसे तुम कह सकते हो। आप वो आपको कहता है जी ये है, बड़ी दलीलें देता है वो आपको, हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है। आप कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं यकीन आता, मैं तो जाके जब देखूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा। आप उठ के जाते हैं उसके साथ बाहर, जाके आप देखे वाकई आग लगी हुई। अब आप जब बाहर देखते हैं तो कहते हैं हाँ अब मैं मान गया, तो ये ईमान नहीं है। समझ आई बात, समझ ले इस बात से, ये ईमान नहीं है। अब इसी को आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हमें मैसेज दिया, सब कुछ हमें बता दिया, हमें आखरत के दिन के बारे में बता दिया, हमें ये बता दिया ये हक है किताब, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला के बारे में जो बातें बता दी। अब हम ने ना अपनी अकल से ना अपने हवास से हम ना कयामत को जान सकते, ना हम अपनी सेंसेस से जाके वहां पे किसी चीज में। तो अब अल्लाह ताला को हम पहचानते हैं उसकी कुदरतों से, उसकी साइंस से, लेकिन बाकी चीजों को तो हम फिर भी नहीं जान सकते। फरिश्तों को नहीं पहचान सकते हम, आखिरत के दिन को, कयामत को, हम जन्नत या जहन्नम को हम कैसे अपने अकल या हवास या किसी साइंस से हम इस तरह से देख सकते। अब हमने अगर उनकी बात के ऊपर एज इट इज यकीन कर लिया, वो है ईमान। लेकिन अगर हम कहें पहले हमें दिखाया जाए, पहले हमें बताया जाए, पहले साइंस प्रूव करेगी तब हम मानेंगे, तो ये ईमान नहीं होता। याद रखें, ईमान हमारी अकलों पर डिपेंड नहीं करता, हमारी सेंसेस पर डिपेंड नहीं करता। ईमान बिलगैब यही है कि जो चीजें गैब में है, जो इनमें समा नहीं सकती, अकल में नहीं समझ आ सकती, या हमारी सेंसेस उनको नहीं पा सकती, उनको हम मान जाए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बताने के लिए कौन आया था? अबू जहल आया था। उसने आगे कहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई आदमी कहे मैं जी मस्जिद अक्सा गया, मैं आसमानों पर गया सैर करके, एक ही रात में गया भी और वापस भी आ गया, क्या ये मुमकिन है? आपको भी आज ही कोई कहेगा इतनी तरक्की के बावजूद, आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि चांद पे भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, आसमानों पे पहुंचता तो दूर की बात है। ठीक है, तो फरमाया ऐसा नहीं मुमकिन। उसने कहा फिर तो तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जुबान से मैं ये सुन के आया हूं वो ये कह रहे हैं। पूछा उन्होंने ये फरमाया? हाँ उन्होंने ये कहा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर अगर उन्होंने फरमाया तो फिर ये सच है। ये होता है ईमान, कि मेरे इल्म मेरा मेरा इल्म मेरा साथ दे ना दे, मेरी अकल चाहे जितना मर्जी कहती रहे, कैसे हो सकता है ये भाई? कब्र का अजाब कैसे हो सकता है? कब्र में तो हमने उसको ऐसे रख दिया, उसको अजाब कहां से होने शुरू, किधर से फरिश्ते आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? ये मेरे समझ में ना भी आए ना, डजंट मैटर, मेरी समझ को इतनी काबिले एतबार नहीं है, मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ आती। मैं तो पूरी दुनिया के अलूम भी मेरे पास आ जाए तब भी अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में कुछ भी नहीं है ये, मुझे कैसे गैब की बातें समझ आ सकती हैं? तो जो लोग इस चीज को सामने रख के सोचते हैं ना कि ईमान ये है कि बस हमें समझ आएगी, हमें पता चलेगा, साइंस प्रूव करेगी, तो ये साइंस का बड़ा रुझान हो गया कि बस साइंस जिस चीज को प्रूव कर देगी तो वो ही हक है। हालांकि एक ईमान वाला वो ही कहलाएगा कि साइंस चाहे अप्रूव करे या ना करे, कर देती है ठीक है, कर देती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कर भी रही है तो, क्योंकि हमें तो पहले ही ईमान है, या ना भी करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा फिर भी ईमान है। वो साइंस के फॉर्मूले, उसके नजरियात रोज बदलते हैं, अल्लाह का कुरान एक ही रहना है, हमें कुरान की बात पे यकीन है, हमें नहीं फर्क पड़ता साइंस क्या कह रही है। अब देखें कुरान कहता है सात जमीन है और सात आसमान है, साइंस तो कहती है आसमान कोई चीज ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, हद्दे निगाह तक जहां तक आपकी नजर जा रही है बस यही, इसी को आसमान कहते हैं, सात का कहां से आ गया, और सात जमीना का तो कोई पता ही नहीं। अगर आज इनको नहीं पता, हो सकता है कल पता चल जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, कल पता चल भी जाएगा तब भी हमारे ईमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यकीन है कि है, और आज भी हमारा ईमान ऐसा ही होना चाहिए। तो पहली चीज जो हमारे अंदर होनी चाहिए मुत्तकी बनने के लिए, वो है कि हमारा ईमान हो गैब पर, अनसीन, जितनी भी चीजें, और अनसीन में देखें, अब एक को एग्जाम्पल आपको ये भी देती हूँ, अनसीन में अल्लाह ताला की हिकमतें भी तो अनसीन है, गैब है, सारी हिकमतें तो हमें नहीं पता चलती। आपका ईमान होता है फिर कि ये अल्लाह की हिकमत है? यहाँ कहते नहीं, मेरा मुझे तो पहले जब तक समझ नहीं आएगी तब तक मैं नहीं मान सकती इसमें कोई हिकमत है। नहीं ऐसे नहीं, हमें गैब पर जब हमने कह दे ना ईमान है, तो अल्लाह ताला की हिकमतें भी गैब है। आपको समझ आ रही है हिकमत? वेल एंड गुड, नहीं भी समझ आ रही तो भी हमें ईमान है कि इसमें हिकमत है, क्योंकि हमारा ईमान है कि मेरे सारी दुनिया का इल्म भी मिल जाए तो तो तब भी वो बहुत थोड़ा है अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में, और उसके इल्म के मुताबिक आगे उसकी हिकमतें उसके मुताबिक है, वो मैं नहीं समझ सकती। तो पहले तो आपने जब ये कह दिया ना कि मेरा ईमान है गैर पे, वहीं पे आपकी आजी शुरू हो गई, यानी इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजें होंगी जो मुझे नहीं समझ आएंगी, बहुत सारी चीजें हैं जो गैब से ताल्लुक रखती हैं, मुझे उनको मानना है। अल्लाह हु अकबर, फिर वही यकीमून सला। अच्छा अब आपने कह दिया ना ईमान है, मैंने आपको बताया कि ईमान आने के बाद इंसान को उस ईमान का इजहार भी किसी तरह होता है, कि सिर्फ ये तो नहीं कहना कि हमारे दिल के अंदर है, बट दिल, आपको क्या पता हमारा दिल कितना अच्छा है, हमारे दिल में ईमान कितना ज्यादा है, आप कौन होते हैं हमें जज करने वाले। आप चाहे हम कुछ भी ना करें लेकिन बस यही कहते रहना, आप कौन होते हैं हमें जज करने वाले। नहीं, ईमान वाकई देखे, अब मैंने आपको जैसे बात बताई कि उसने आके कहा बंदे ने कि बाहर आग लगी हुई है, अब अगर मैं उसकी बात पे यकीन कर लूं तो क्या ऐसे ही बैठी रहूंगी, उठ के दौड़ेंगे कि भाई बाहर आग लग गई, अपने आप को बचाओ। और अगर हम आराम से वैसे ही बैठे रहते हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वो कह रहा बाहर आग लग गई है, हो नहीं सकता कि हमें उसकी बात पे यकीन हो और हम फिर भी पैर पे पैर रख के और बातें करते रहे और मजा करते रहे। अगर हमें उसकी बात पे यकीन होगा फौरन हम एक्शन करेंगे, यही इस चीज का सबूत होगा कि हम यकीन कर रहे हैं इसकी बात पे, हमने मान ली है इसकी बात। और हम कहें अच्छा मान लिया हमने तुम्हारी बात, समझ आ गई है, बस करो, और बैठे रहे वैसे, तो इसका मतलब हमने वाकई मानी नहीं है, सिर्फ मुंह की बात है। इसी तरह लाजमी नतीजा है कि जब इंसान मान जाता है कि एक अल्लाह की जात है, फरिश्ते हैं, आखरत का दिन है, रसूलों ने बात सही की है, रसूल आए हैं, उन्होंने पैगाम सही दिया है, किताबें हक हैं, ये सब हक है, मैंने सब मान लिया, तो कैसे हो सकता है फिर भी इंसान बैठा रहे। फिर तो फौरन उठेगा और यकीमून सला, कायम करते हैं वो नमाज को, वो ऐसे बैठे नहीं रहते। फिर यही फर्स्ट चीज है जो आप अपने एक्शन से जाहिर करते हैं कि अल्लाह मैं तेरी ओबीडियंट, अल्लाह मैं तेरी गुलाम, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं। पहली चीज से आप जो सबूत देते हैं अपने ईमान का, देखिए आप कलमा शहादत पढ़ता है ना कोई, तो उसके बाद फौरी तौर पर पहली चीज जो बेस लाइन है, इजहार कैसे करें हम, किस तरह से बताएं कि मेरे पास ईमान है, वो उसका तरीका, पहला तरीका नमाज। अगर कोई नमाज ही नहीं पढ़ता तो समझ लें वो अल्लाह की गुलामी से निकल गया, वो तो बाहर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बंदे में और कुफर में सिर्फ नमाज का ही फर्क है, ईमान और कुफर में नमाज का सिर्फ फर्क है, कोई नमाज से पता चलेगा कि कोई ईमान वाला है या काफिर। अगर आपने अल्लाह का बंदा खुद को साबित करना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो ईमान लाने के बाद तो फौरन समेना वाताना होता है, ये नहीं होता कि बस अच्छा अभी हम सोचेंगे, अभी हम देखें क्या करते हैं, देखते हैं फिर करना भी है कि नहीं, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते। पता तो करूं, मेरे लिए भी बात कही गई है कि नहीं कही गई, देखूं, देखती हूँ, तरद्दुद में पड़े रहे, शक में पड़े रहे, नहीं मान जाना, तो उसके बाद मान गए तो उसके बाद एक्शन शुरू होता है, और एक्शन में फर्स्ट एक्शन इकामते सलात का। और वैसे भी अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया सारी चीजें, चाहे वो दरख्त हैं, चिरिंद हैं, परिंद हैं, आसमानों जमीन में जितनी चीजें हैं ना, सारी अपनी नमाज को जानती हैं, अपनी तस्बीह को जानती हैं, तुम्हें नहीं पता उनकी नमाज, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो दरख्त है, चाहे वो दरिंदा है, परिंदा है, कोई भी है, सब अपनी नमाज को जानते हैं और अपनी तस्बीह को जानते हैं। तो जब हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो बेसिकली हम उनके साथ मिल जाते हैं तस्बीह में और नमाज में, ये सिंबॉलिक है कि मैं अल्लाह की गुलाम हूं, जैसे सारी कायनात अल्लाह ताला की ओबीडियंस में और उसकी गुलामी में लगी हुई, इसी तरह मैं भी, मैं उनके साथ हूं। और फिर देखे हैं अल्लाह ताला ने जितनी भी हमारे ऊपर नियमतें की हैं उसके बाद तकाजा ये कि हम उसके आगे झुक जाएं, और झुकने में सबसे पहली चीज नमाज ही है। इंसान उसमें अल्लाह ताला के आगे ओबीडियंस के साथ एक गुलाम की तरह हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, फिर उसके आगे झुकता है, फिर जमीन पे ही अपना सर रख देता है। और देखिए आप, सलात का मतलब क्या है? सलात के तकरीबन 22 माने हैं डिक्शनरी में, और अरब में इसको भी सलात कहते थे जब गोश्त को चढ़ाते थे ना किसी, जैसे आप बारबेक्यू करते हैं तो उसको जब हीट लगती है तो गोश्त में से जो भी फाजिल मादे होते हैं, चर्बी है या जो सारी पिघल के गिरना शुरू हो जाती है और गोश्त सिर्फ बाकी रह जाता है, इसको भी सलात कहते थे। तो अब सलात का माना हम कहां से लेंगे? दुआ भी माना है इसका, और भी माने हैं। तो क्या हम डिक्शनरी खोल के बैठ जाएंगे सलात का माना क्या? क्योंकि एक फिरका ऐसा था जिन्होंने ये कहा कि हम तो नहीं नमाज पढ़ते, ये नमाज क्या होती है, बस सलात का मतलब दुआ होता है, हम बस दुआ कर लिया करेंगे, हो गई हमारी सलात। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सलात जो यहाँ पे कुरान में कही गई है वो हम डिक्शनरी खोल के बैठे देखें, क्या आप बारबेक्यू करना शुरू कर दें, कहेंगे मैं तो सलात ही कर रही हूँ, कैसे पता चलेगा? दुआ मांगने शुरू कर दें, मैं तो सलात कर रही। इसी वजह से अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा कि वो कुरान का माना इंसानियत तक पहुंचा दें, खोल खोल के बयान कर दें कि आप ये नहीं आप करना है कि हम बैठ के सोचें कि अच्छा इसका माना क्या बनेगा, हम क्या देखेंगे। कुरान को समझने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे समझाया, कैसे बताया, वरना तो ये कुरान किसी पहाड़ पे रख दिया जाता, जाओ जाके ले लो और लुगत खोल खोल के देख लिया करो, और अरबों को तो यार वैसे ही माने आते थे। तो ये नहीं कि हमने लुगत में से देखना है, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है कि उन्होंने कैसे इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करके दिखाया और इसका क्या माना हमें समझाया। क्या तो आपने तो फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, वैसे सलात कायम करो। और देखिए आपने कुरान करीम में आप जगह जगह नमाज का जिक्र देखेंगे, लेकिन कहीं पे आपके युसल्लून सलात नहीं देखेंगे, नमाज पढ़ते हैं बल्कि युकीमून सला, कायम करते हैं नमाज। कायम करना और पढ़ने में फर्क है, कायम करने में मतलब है कि नमाज को उसकी तमाम शराइत के साथ, नमाज को उसकी तमाम हकूक के साथ, आदाब के साथ अदा किया जाए। यानी क्या मतलब है कि यानी अब जब नमाज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो ये कि इसमें कोई रियाकारी ना हो, नंबर टू खुशुओ खुजू हो, यानी अल्लाह ताला के आगे खड़े हैं तो तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ हो और ये पता हो कि मैं किस हस्ती के आगे खड़ा हूं, ये डर हो कि मैं कितने रब्बुल आलमीन के सामने, कितने बड़े रब के सामने खड़ा हूं। फिर वक्त की भी पाबंदी हो, इन्ना सलात कानत अलमुमिनीना किताब मौकूता, नमाज अपने टाइम के मुताबिक, ये नहीं है कि पूरी दिन की नमाजें, अब हम जॉब पे होते हैं हम ऐसे होते हैं सारे दिन की नमाजें जमा करके हम शाम को पढ़ लेंगे, या फिर हमारे तो इतने सारे काम है अब जब फारिग होंगे तो पढ़ ही लेंगे ना नमाज, कौन सी भागी जा रही नमाज, यानी कामों को ना हमारे देर हो जाए, नमाज कौन सी चली जाएगी उसका हमें कोई परवाह नहीं, फिर वो आखिरी जब वक्त होगा तो तब पढ़ लेंगे, तो कजा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये नहीं इकामत सलात होती। और फिर ये इकामत सलात नहीं है कि एक पढ़ी तो दो छोड़ दी, फिर एक पढ़ी फिर एक छोड़ दी, इस तरह से नहीं, दिन में कभी चार पढ़ ली कभी तीन पढ़ ली, जैसे दिल किया पढ़ ली, एक आध रह भी गई तो कोई बात नहीं, हाफिजू अला सलात, हिफाजत करो नमाज की, कि नमाज की ऐसे हिफाजत करें जैसे आप अपनी किसी कीमती चीज की हिफाजत करते हैं, हाय कहीं मेरी नमाज निकल ना जाए। जो वैलुल मुसल्लीन है वो कौन से मुसल्लीन के लिए है, कौन से नमाज पढ़ने वालों के लिए, वैल है जहन्नुम है वो नमाजी जो अपनी नमाज कोई एक पढ़ते कोई एक छोड़ते, ये नहीं कहा गया बेनमाजी के लिए जहन्नुम है, इसलिए बेनमाजी का तो फिर जो अंजाम होगा वो तो पता नहीं क्या है, लेकिन वही जो इतनी सख्त जहन्नुम की वादी है उनके लिए जो नमाज पढ़ने वाले हैं लेकिन नमाज को कायम नहीं करते ना, इसी तरह वुजू की शरायत पूरी करे, अपनी तहारत की शरायत पूरी हो, जाहिर और बातिन दोनों के अंदर नमाजों के आदाब का ख्याल रखा जाए, और फिर मर्द कोशिश करें कि बाजमात नमाज पढ़े, सब नमाज की इकामत में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्रानी की हदीस है मौजम सवीर और कबीर में भी है, कि आपने फरमाया तहतरिकून तहतरिकून, यानी तुम जल रहे हो, तुम जल रहे हो, यानी गुनाहों में जल रहे हो। और फिर नमाज का वक्त आ जाता है, और फजर की नमाज का वक्त आता है, तो वो इसको जब इंसान पढ़ लेता है तो वो फिर इंसान के गुनाहों की जो भट्टी होती है उसको ठंडा कर देती है, बुझा देती है। फिर फरमाया तहतरिकून सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, कि फिर से दोबारा फिर गुनाहों में तुम पड़ जाते हो, यानी फिर फजर पड़ी उसके बाद फिर गुनाहों में पड़ गए, कहीं इंसान अपने कानों के गुनाह, कहीं हाथों के, कहीं पैरों के, कहीं जुबान से गुनाह कर रहा होता है, और फिर गुनाहों में पड़ गए, फिर जोहर का वक्त आ जाता है, तो फिर इंसान अपने गुनाहों की आग को बुझा देता है। फिर फरमाया सुम्मा तहतरिकून तहतरिकून, फिर तुम्हारा ये हाल होता है, फिर गुनाहों की भट्टी में जलने लगते हो तुम, और फिर असर का वक्त आ जाता है। इस तरह करते करते आपने फरमाया, फिर उसके बाद ईशा का वक्त आ जाता है, ईशा का वक्त आता है, तो फिर तुम अपने ईशा की नमाज पढ़ते हो, तो अपने गुनाहों को धो डालते हो, और फिर फरमाया थुम्मा तनामून, फिर तुम सो जाते हो, फिर नहीं फरमाया सुम्मा तहतरिकून तुम तरतर, फिर तुम सो जाते हो, यानी फिर सो जाता है इंसान, तो फिर सोते हुए का तो नहीं अपनी गुनाहों की आग जला रहा ना, तो जो सोते ही ना हो ईशा के बाद, जो उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी तो पार्टी टाइम शुरू है, ईशा पढ़ के फिर पार्टीज में चले जाते हैं, फिर वो पार्टी टाइम रहता है फिर सुबह तक, तो वो या फिर सो जाते हैं उसके बाद जाके, तो वो जो जलाई फिर उसके बाद आग, उसको कौन बुझाएगा, फिर अगर उसी में मौत आ गई तो क्या होगा। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, तो वो युकीमून सलात करते हैं, तो कायम करना है नमाज को हम सब ने, तो अब से फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि हम नमाज को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए। हज़रत उमर ने फरमाया था ना कि नमाज हर चीज से ज्यादा, दुनिया की हर चीज तमाम कामों से ज्यादा अहम नमाज है, यानी सारे काम बाद में, पहले नमाज है। तो अल्लाह ताला हमें नमाजी बना दे, नमाजों कायम करने वाला बना दे, अल्लाह ताला हमें गैब के ऊपर ईमान रखने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें मुत्तकीन में शामिल फरमाए, अल्लाह ताला हमें जो हमें बातें नहीं भी समझ आती अल्लाह ताला उनको भी हमारे लिए, उनके ऊपर भी हमारा ईमान फर्म रहे, मजबूत रहे, और मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने रिस्क दिया उनको, युन्फिकून वो खर्च करते हैं। अब यहाँ पे रिस्क का मतलब क्या, हम सिर्फ रिस्क का मतलब माल लेते हैं, माल भी है लेकिन रिस्क का मतलब हर नेमत जो अल्लाह ताला ने अता फरमाई वो रिस्क है। अब क्या क्या नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं सोचे, जिंदगी नेमत है, आपकी औलाद नेमत है, आपका घर बार नेमत है, आपके पास जो वक्त है वो नेमत है, आपकी जवानी नेमत है, आपको जो सहूलियात मिली है वो नेमत है, आपको जो खाना पीना मिला हुआ वो नेमत है, जितने रिसोर्सेस मिलेंगे वो नेमत है, आपकी जो सलाहियतें वो नेमत है, इल्म वो नेमत है, जॉब या काम कारोबार वो नेमत है, उसमें से खर्च करते हैं, खर्च कर रहे हैं यानी अल्लाह के रास्ते में उन चीजों को लगाते हैं, अल्लाह के रास्ते में उनमें से देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर माल है तो उसमें से खर्च करना, अगर आपकी सलाहियतें हैं, आपके पास देखने की सलाहियत है, सुनने की है, बोलने की है, या जवानी है, या हिम्मत है, या सेहत है, या जिंदगी है, इनमें वक्त निकालें अल्लाह ताला के लिए, इन फैकल्टीज को अपनी यूज करें अल्लाह ताला के रास्ते में, या लोग अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत में, उनके काम आने में। अब ये हमारी चीजें कहीं ना कहीं तो यूज हो रही है ना, इल्म भी कहीं ना कहीं लग रहा है, हमारी जुबान कहीं ना कहीं खर्च हो रही है, सलाहियतें खर्च हो रही है, लेकिन क्या वो अल्लाह की खुशदूदी के काम है, अल्लाह ताला से बचा के नहीं रखना कि वो बस उस तरफ नहीं, बस मेरे अपनी ख्वाहिशात में सब चीजें खर्च हो जाए, नहीं, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए। देखिए मुत्तकी की हमने बात ही ये पढ़ी थी ना, ये मुत्तकी की हम क्वालिटीज देख रहे हैं, अरे मुत्तकी जो वो है जो कि वो हर काम वो करना चाहता है जिससे अल्लाह ताला राजी होता, तो फिर वो रिस्क में भी खर्च करेगा, लगाएगा इन चीजों को अल्लाह के रास्ते में, इससे पहले कि जवानी ढल जाए, उसमें से अल्लाह ताला के लिए वक्त निकाले, हिम्मत चली जाए उस हिम्मत को लगा दे, सेहत के बाद इससे पहले कि बीमारी आ जाए उस सेहत के दिनों को गनीमत जाने, और खर्च करें अल्लाह के रास्ते में कुछ, यानी इन चीजों को यूज करते हुए आप क्या अल्लाह ताला के दीन की या उसकी मखलूक की कोई खिदमत कर रहे हैं, वो उस रास्ते में भी लगा रहे हैं या सिर्फ अपनी ख्वाहिशात में ही लगे, मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए बस। तो ये खर्च करना आसान कब होगा, जब आपको ये पता होगा रज़क़नाहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया हमने दिया है ये रिस्क तुम्हें, तो वो अपने थोड़ी लेकर आए ना, लेके तो नहीं पैदा हुए थे ना, अल्लाह ताला ने दिया ये जिस्म, ये जितने जिस्म के अंदर अज़ा हैं सब अल्लाह ताला के दिए में, फिर इन नेमतों से अल्लाह के रास्ते में कुछ लगाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि गिन गिन के ना, तो तुमने सलमान से फरमाया गिन गिन के ना तो, वरना अल्लाह ताला भी तुम्हें गिन गिन के देगा, तो जब अल्लाह के रास्ते में दे तो गिन गिन के ना लगाया करें, मैंने तो इतने 2 घंटे लगा दिए भाई, हाँ पैसे ले लो, वक्त नहीं हमारे पास, जिस चीज को हम कीमती समझते हैं वो अल्लाह को नहीं देना चाहते, जो हमारे लिए फालतू फालतू है ना, चलो पैसे $10 निकाल के दे दिए, 100 निकाल के दे दिए, ये आसान था ये दे दो, लेकिन जो हमें अच्छी लगती है ना चीज वो नहीं देते, जबकि जो हमें सबसे प्यारा होता है उसके लिए हम क्या करते, सबसे अच्छी चीज रखते, इसीलिए चौथा पारा शुरू होता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक तुम वो ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे महबूब है, हम महबूब चीजों को रोक के रखते। वल्लदीन युमिनूना बिमा अंजिला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, वल्लदीना और वो लोग, युमिनूना ये वही वाला लफ्ज है जो पहले आया, बीमा बी साथ, मा जो साथ उसके, जो उनजिला अनजला होता है और उनजिला भी, अनजला उसने नाजिल किया, उनजिला नाजिल किया गया, ये मजहूल हो गया, पैसिव टेंस हो गया, और नाजिल किया चीज होती है जो ऊपर से नीचे को आती है, इला तरफ का आपकी, आपकी तरफ, इला ये अलिफ लाम या अलग आपने देखा होगा लिखा हुआ वो ही वाला है, लेकिन उसको का के साथ ज्वाइन कर दिया, तो अगर आप ये छोटे छोटे अल्फाज को इस तरह ओपन करके इनके माने याद कर लेंगे तो बार बार ये यूज होते हैं, का एक प्रोनाउन है, जमीर है, तुम आप इसके लिए आता है, तो वो लोग कौन लोग, जो मुत्तकी हैं उन्हीं की बात चल रही, वो ईमान रखते हैं जो उसके साथ जो नाजिल किया गया, माजी मजहूल है, नाजिल किया गया इला तरफ आपकी, किस कौन किसको कहा जा रहा है, आपकी तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल किया गया, कुरान तो नाजिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये फिर वरना तो लिख दिया जाता वल्लदीना युमिनूना बिल कुरान, यहाँ पे बिल कुरान तो है ही नहीं, बिमा उन्जिला इलैका, इसका मतलब है कि सिर्फ कुरान नहीं है मुराद, कुरान के साथ कोई और भी चीज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, और वो है जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के बारे में जितनी भी हमारी रहनुमाई की, जिसको हम हदीस कहते हैं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, आप तो वही के मुताबिक ही बात करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो काम और बात जिसका भी ताल्लुक दीन से था, इनमें से कोई बात आपने अपनी तरफ से नहीं बयान फरमाई, बल्कि वो भी अल्लाह ताला की तरफ से थी, उन सब के ऊपर ईमान रखते हैं, यानी इसके ऊपर ईमान रखना जरूरी है। अब हमें पता चला वही, इसका मतलब 2 किस्म की होती है, एक है वही मतलू, वही मतलू कौन सी, जिसकी तिलावत की जाए वो वही, और वो क्या है कुरान, और एक वही है गैर मतलू, यानी जिसकी तिलावत नहीं की जाती वो है हदीस, मगर है दोनों वही और दोनों ही के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पे कुरान और इस जैसी एक मुझे कुरान और इस जैसी एक और चीज अता की गई, और वो क्या है एक और चीज, हदीस या सुन्नत, एक ही बात है, हदीस या सुन्नत एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है ऐसा। तो इसलिए सिर्फ कुरान पर ईमान रखना जरूरी नहीं है, बल्कि कुरान की ही हिफाजत अल्लाह ताला ने इस तरह से की कि इसके माने की हिफाजत हदीस से होती है। अब जैसे मैंने आपको सलात का माना बताया, अब कोई किसी ने क्या किया कि हदीस नहीं देखी ना, और उन्होंने कहा कि हम तो हदीस को मानते ही नहीं, लिहाजा हम तो अब अपना खुद ही माना बनाएंगे और दुआ बना के माना, और बस दुआ करते रहते हैं, तो कोई नमाज वगैरह वो नहीं पढ़ते। तो जरूरी है कि हदीस को माना जाए, क्योंकि हदीस ही कुरान की एक्सप्लेनेशन देती है, और वहीं से हमने देखना है कि कुरान का माना क्या है। कई बातें नहीं आपको समझ आएंगी, किस तरह से इनको प्रैक्टिकली करना है, वहां हदीस ही आपकी रहनुमाई करेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे समझाया कुरान करीम को, ये आपका फराइज मनसबी था, एक फराइज मनसबी में से था, यानी एक फरीजा ये भी था कि आप कुरान करीम को खोल खोल के बयान करें। और ये इंशाल्लाह सूरह बकरा में भी, आगे आले इमरान में भी आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजा ताकि वो लोगों तक अल्लाह की किताब को खोल खोल के बयान करें। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम की तो हिफाजत फरमाई, हदीस की भी फरमाई। ये जो लोग कहते हैं कि हम हदीस को नहीं मानते, ये तो बाद में लिखी गई और ऐसे हुआ और ये हुआ, ये इतना झूठ है कि ये वो लोग हैं जिनको हदीस का पता ही नहीं कि हदीस कैसे प्रिजर्व हुई। आज गैर मुस्लिम भी दंग है इस बात के ऊपर कि कितना बड़ा इल्म है ये हदीस को प्रिजर्व करने का। अल्लाह ताला ने ऐसे लोग पैदा फरमा दिए जिनको मुहद्दिसीन कहते हैं, इतना बड़ा इल्म इजाद हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को, आपकी जिंदगी को, आपकी बात, आपके फेर, आपकी तकरीर, यानी जिस चीज को आप ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया, वो चीजों को प्रिजर्व करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी जनरेशन पैदा की कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर बात को नोट किया। और सोचें, इमेजिन करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को कोट करने वाले से लेकर किताब लिखने वाले तक जितने लोग इन्वॉल्व हुए, यानी जो चेन बनी, उनमें से एक एक फर्द की जिंदगी के पूरे हालात लिखे गए, यानी सहाबी से लेकर जिसने किताब लिखी, चाहे वो इमाम बुखारी है, चाहे वो इमाम मुस्लिम है, चाहे वो कोई, जितने लोगों से नरेशन उनने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन जितने सुनने वाले थे, ऐसे नहीं कि किसी भी राह चलते से सुन के तो उन्होंने लिख ली हदीसें और उन्होंने कहा मैंने जी फलां से सुना, उसने फलां से सुना, उनसे ऐसे नहीं ली गई। आप जब कभी हदीस की किताबें खोल के देखें और उनकी चेन्स देखें, किसने किससे सुना, जिस जिससे सुना, इल्म रिजाल एक पूरा इल्म है। हर एक बंदे का हाफजा कैसा था, उसका ईमान कैसा था, उसकी जिंदगी कैसी थी, पूरी पूरी उनकी जिंदगियों को महफूज किया गया। हत्ता के उन्होंने अगर पूरी उन किसी ने अगर पूरी अपनी जिंदगी में एक झूठ भी बोलना उससे साबित हुआ हो, किसी भी मामले में, दीन के नहीं, किसी भी मामले में एक झूठ बोलना भी साबित हुआ, उसको उन्होंने अनऑथेंटिक यानी ऐसे के गैर मोतबिर करार दे दिया कि इसका इतबार नहीं है। सुभान अल्लाह, इस तरह से हदीस को प्रिजर्व किया गया कि उससे फिर हदीस नहीं ली जा सकती, जिंदगी में एक झूठ इसने बोल दिया। ऐसे ही तो नहीं वो जा जा के हदीसें लेते थे, जो भी कह दे ये हदीस है तो उससे हदीस लेके बैठ जाए, इस तरह आपने कोई इसको मजाक समझा? ये इतना बड़ा इल्म इजाद हुआ है, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, किसी की जिंदगी के ऊपर ऐसे इस तरह का एहतमाम होना, इस तरह की डेलिकेसी, एक एक चीज को बारीक तक जाके देख के और फिर उसको किस तरह से महफूज किया गया, ये सिर्फ मुसलमानों ने किया है अपने नबी की जिंदगी को ऐसे, किसी की जिंदगी ऐसे नहीं। पूरी इंसानियत के दौर में देख लें, और नबी भी तो गुजरे हैं, किसी की जिंदगी कैसे महफूज नहीं। तो कुरान करीम की भी हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की भी। वरना तो इसी वजह से आज लोग हदीस से क्यों भिदकते हैं, क्योंकि वो कुरान की मनमानी तफसीरें करना चाहते हैं, जैसे उनको दिल करे, जिस तरह से वो गुंजाइश कहीं निकालना चाहें, जिस तरह से वो तोड़ना मरोड़ना चाहें, वैसे चाहते हैं। अब वो सिर्फ एक सूरत हो सकता है हदीस को छोड़ दें। तो हमने ईमान रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुआ, वमा, और जो उन्जिला, नाजिल किया गया, वही लफ्ज है, मिन से कबली का, कबल उर्दू में भी बोलते हैं, का आपने माना पहले सीख लिया, इलेही का में भी का था और यहां पे भी का, कबल पहले का आपसे, जो नाजिल किया गया आपसे पहले, कौन आप, नबी अलैहिस्सलाम, यानी आपसे पहले जितनी किताबें, जितने सहीफे इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आए, हम सबको कहते हैं कि हम उनके ऊपर ईमान लाए। क्या ईमान लाने का मतलब है कि कल को हम बाइबल पकड़ के पढ़ना शुरू कर दें? नहीं, ये ईमान लाते हैं कि वो उस वक्त उतरे थे ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही थे, और वो उस जमाने में उन लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने उतारे थे। आज फिर क्यों, आज क्यों नहीं हम उनको पढ़ सकते? इसलिए कि उनमें तहरीफ हो चुकी, नंबर वन ये बात। नंबर टू, अगर तहरीफ नहीं भी हो, मसलन बिल्कुल प्रिजर्व हो, तब भी इसलिए कि वो शरीयतें अब एक्सपायर हो गई हैं, अब कुरान आ गया है, तो वो एक्सपायर हो गई, अब कुरान उनकी जगह पर है जो कयामत तक के लिए, इसलिए अब उनकी जरूरत नहीं है। तो ईमान फिर किस पे लाना है कि वो किताबें और वो जो सुहुफ है, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे या किसी पैगंबर पे भी उतरे, वो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए थे, वो अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई थी उस दौर के लिए जिसमें वो नाजिल हुए। आज आप देखें तौरात और इंजील और वो तो अलग अलग इस तरह से नाम नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट है जिसमें, टेस्टमेंट है जिसमें जबूर भी है और तौरात भी है, और न्यू टेस्टमेंट है जिसमें इंजील है, जिसको हम इंजील कहते हैं। तो हम ये ईमान लाते हैं वो अपने दौर में जो उतरी थी वाकई अल्लाह ताला की तरफ से उतरी थी, और अल्लाह ताला ने इनको रहनुमाई दी थी। वह बिल आखिरती, और भी साथ आखिरती, आखरत के, आखरत का आपको पता है एक दुनिया और एक आखरत, आखरत का मतलब होता है बाद वाली। हुम भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये स्टैंड अलोन प्रोनाउन है, यानी अकेला होता है। एक वो वाला हुम है जो अटैच होता है, जैसे रजक ना हुम में था, एक हुम है जो अलग है, वो यू किनून, यू किनून, वाओ काफ नून इसका रूट है, और या काफ नून भी कहा जाता है। जो या शुरू में, वो किसके लिए, वो थर्ड पर्सन के लिए, वो के लिए, वो यकीन रखते हैं, तो रखते हैं, रखता क्यों नहीं है, इसलिए कि वाओ नून है, प्लूरल है। और यकीन जो है ना, वो ईमान के भी ऊपर का दर्जा है, या ये कह सकते हैं ईमान का उलट कुफर होता है और यकीन का उलट शक होता है, यानी किसी चीज में भी शक आ गया तो वो यकीन की, यकीन नहीं है फिर, यानी यकीन का ऑपोजिट हो गया। तो अब वो ये नहीं यहाँ पे कहा गया यू किनूना बिल आखिरती, जैसे पहले आ रहा था यू मिनूना बिल गई, तो यू किनूना बिल आखिरती भी आ सकता था, लेकिन वह बिल आखिरती हम यू किनून, आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, यानी क्या मतलब। अब ये अंदाज है ना, बहुत ताकीद का, एम्फोसाइज करने वाला अंदाज है, कि सब बातें बता के अब लास्ट जो सिक्स्थ उनकी क्वालिटी बयान की गई वो ये है कि आखरत पर यकीन भी फिर इन्हीं लोगों का होता है, समझा, ये वाली बात है। यानी अब जो ये सारा कर रहे हैं ना, वाकई फिर आखरत पे यकीन भी उन्हीं को होता है, आखरत पे यकीन होगा ही तो वो ये सारे काम कर रहे होंगे, यही होते हैं जिनका आखरत पे यकीन होता है, क्योंकि आखरत का यकीन ऐसी चीज है, अगर इसमें जरा शक पड़ जाए ना तो अमल सीधा नहीं हो सकता। आपको देखे ना, किसी चीज में भी शक पड़ जाए, आप वो कहें जैसे यहाँ पे ये चीज पड़ी हुई थी, मसलन मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी हुई, दूध है, तो भाई यहाँ पे ये बाथरूम के पास पड़ा होता, हो सकता है इसमें कोई पेशाब का छींटा पड़ गया। अब हम कह नहीं सकते, देखिए ना, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो सकता है, 1% चांस है कि हो भी सकता है किसी ने पेशाब किया और यहाँ पे इसमें पड़ा। आप पियेंगे उसको? नहीं पियेंगे आप, वो कराहत आएगी। एक कतरा ही है तो क्या फर्क पड़ा? और देखें शकी है ना, लेकिन आप नहीं पिएंगे, क्योंकि जिस चीज में शक आ जाता है ना, इंसान वो सही से नहीं कर सकता। जिसको शक हो जाए ना, पता नहीं, देखे ना, मर के मट्टी हो गए, पता नहीं जीना भी है दोबारा के नहीं, हो सकता है ये आखरत है भी कि नहीं, हो सकता है, क्या पता, हशर नजर है भी कि नहीं, हो सकता है जहन्नुम कुछ भी ना हो और सारों ने जन्नत में जाना हो, सिर्फ डरावे ही हो। आखरत का यकीन वो नहीं है, याद रखें, कि जो हम खुद ही अपना ही बना लें, एक हमने खुद ही एक अपने ख्याल में बनाया हुआ आखरत, और उसके ऊपर जो सोच रहे हैं या जो क्रिश्चियन सोच रहे हैं या जो यहूदियों ने भी अपना एक सोचा हुआ है, वो भी आखरत पे यकीन रखते हैं, लेकिन उसको यकीन नहीं कहते, इसलिए कि वो जो अपने जहन में खुद से एक बना के और फिर उसको सोचना कि ऐसी आखरत, वो आखरत पे यकीन ही, ये आखरत पे यकीन वो है कि जैसा अल्लाह ताला ने बताया है ना, उसके नबी ने बताया, वो है जो आखरत पर यकीन है, उसके मुताबिक यकीन रखना, अपने अपने नहीं, खुद ही क्राइटेरिया बना लेना कि वो तो हम वहां पे उसको पकड़ के आगे चले जाएंगे, वो तो हमें बचा लेगा, और देखें हमारी तो सिफारिशें वैसे ही हो जानी है, और वहां पे सबको अल्लाह ने माफ कर देना है, उसने क्यों किसी को अजाब देना है, कुछ किसी को नहीं अजाब वगैरह, ये तो ऐसे डरावे इतने मौलवियों ने बनाए में, तो ऐसी बातें कहने की, छोड़े छोड़े ऐसी बातों को, ये नहीं होता आखरत पे यकीन। आपने तो सारा उसको पलूट ही कर दिया, अपनी मर्जी का ही बना दिया, जो अकीदा खुद चाहते थे वो बना के और उसके बाद यकीन करके बैठ गए। नहीं, ये यकीन नहीं होता, यकीन ये होता है जैसे अल्लाह ताला के नबी ने बता दिया वैसे ही उसको समझना, वैसे ही उसको मानना, वैसे ही उसकी तस्दीक करना, वो है आखिरत पे यकीन। अब दुनिया में देखिए, ये डिफरेंट मजाहिब ने भी हेयर आफ्टर का एक अकीदा उनके भी है, लेकिन उसको हम नहीं ये कहेंगे कि वो यकीन रखते, क्योंकि उन्हें सबने चेंज कर दिया हुआ। यहूदी कुछ कहते हैं हम तो सारे बख्शे बख्शाए हैं, और वो ईसाई कहते हैं हमें तो ईसा अलैहि सलाम नहीं वहां पे बचा लेना है, वो सूली पे इसीलिए तो चढ़े थे ताकि हमें बचा ले, हमारे सिंस उन्होंने ले लिए अपने ऊपर, अब हमने तो वहां पे जन्नत में जाना है, तो अब इसको कहेंगे यकीन है आखिरत का? इसी तरह हमारे मुसलमानों में तो ये यकीन वो जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने क्या बताया, कुरान में अल्लाह ताला ने क्या बताया आखरत के बारे में, वो उसके ऊपर यकीन करना, और जिस दिन ये यकीन आ जाए ना, जिंदगी बदल जाती है इंसान की। कैसे, आप वो सोचेंगे कैसे बदल जाती? आप देखें, एक दो बंदे हैं, दोनों कोई सुबह उनका मौत का वक्त मुकर्र है, ठीक है, लेकिन एक है उसको सजाए मौत सुबह मिलनी है, और दूसरा है वो अपने घर में बैठा हुआ है, उसको सुबह को कोई हार्ट अटैक होना, उससे उसने मरना, मौत सुबह को दोनों को आनी है, लेकिन एक है जिसको यकीन है कि मुझे मौत आनी है, क्योंकि उसकी सजाए मौत का सुबह फैसला है, सुबह वो जानी। दूसरा है उसको पता है कि हाँ मरना तो है मैंने, मैं कौन सा मरने पे इनकार करता हूँ, लेकिन सुबह मेरी मौत आ जानी, इसका उसको थोड़ी यकीन है, वो अपने घर में आराम से बैठा। आप मुझे बताएं, दोनों की रात एक जैसी गुजरे? हरगिज नहीं। एक वो जिसको सजाए मौत सुनाएगी, उसकी रात क्या गुजरेगी कि उसको पता है सुबह मेरी मौत है, और जिसको यकीन ही नहीं, पता है हाँ, मरेंगे एक दफा, ये भी पता है कुछ हो सकता है कल आ जाए मौत, अब हम सारे ही कहते हैं ना, हो सकता है हम यहाँ से उठे हमें मौत आ जाए, हो सकता है आज रात हमारी कब्र में, तो यकीन किसको है? जब यकीन नहीं ना होता तो उसके और उसके अमल में बहुत फर्क होगा। इसी तरह जिसको आखरत का यकीन आ जाए ना, उसकी फिक्रों में सबसे ऊपर आखरत की फिक्र हो जाती है, उसकी तैयारियों में सबसे बड़ी तैयारी आखरत की होती है, उसको ये गम पड़ जाता है मेरे पास वक्त कम है, मैंने करना बहुत ज्यादा है, वो कहाँ इन जंबेलों में पड़ता है कि उसकी जिंदगी के अंदर फजूलियात ही खत्म नहीं हो, कभी इधर घूम रहे जा रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कह रहा है टाइम ही पास नहीं हो रहा, बस टाइम पास करने के लिए गेम्स खेल रहा हूँ, टाइम को किल कर रहा हूं, वो टिकाए किल करने का किसके पास टाइम है? देखो तो वक्त कितना कम रह गया, कितना कुछ करना है। जिसको ये यकीन नहीं है ना, वो उसके पास तो बहुत टाइम है फजूलियात के लिए, बहुत टाइम है। शॉपिंग है तो शॉपिंग में सारा दिन गुजर गया, चीजें नहीं भी चाहिए, चलो विंडो शॉपिंग के लिए चलते, तो टाइम जो बहुत है। उसको बैठ के देख लिया वो क्या कर रहा है, उसको बैठ के देख लिया वो, क्योंकि अपने एहतसाब का तो कोई फिक्र ही नहीं, अपने मामले की कोई परवाह ही नहीं। शादियां करना शुरू करें तो मेहंदी और ढोलकियां ही नहीं खत्म हो रही हैं, पर टाइम जो बहुत ज्यादा है। शादियों की डेकोरेशन शुरू की, डेकोरेशन ही खत्म नहीं हो रही, इतना फालतू टाइम। अल्लाह अकबर, बहुत फालतू टाइम है। इसलिए कि इनको फिक्र नहीं है कि एक आखरत आगे है जिसको इनको परेशानी लग जाए। जब उसकी फिक्र लग जाए, जब उसका फिक्र इसलिए नहीं कि यकीन ही नहीं, जब उसका यकीन आ जाए ना, यू की नून है, यकीन का लेवल है जिसमें कोई शक ही नहीं, बस लाजमी है, ऐसे तो हो ही जाना है। जिन चीजों के हमें यकीन होते हैं ना, हम नहीं आराम से बैठते, हमें यकीन है ना, इसने फोरकास्ट कर दिया कि कल स्नो है तो हम भागेंगे, या आप ग्रोसरी करके रख घर में रखू, यकीन है हमें, दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया, यकीन हो गया कि भाई अच्छा ये तो ये कोविड फैल रहा है और बस इस वक्त बस हर तरफ है, उठ के भागेंगे अब हम तो, उठ के कोई वैक्सीन लगवा लें। यकीन इंसान को बैठने नहीं देता, ये कौन सी यकीन है? क्या हमें परेशानी है तो नौकरियों की है, पैसे की है, और अब ये बीमारी ना लग जाए, वो फलाना ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, या हमारे पास टाइम इतना है कि बेढब जिंदगी गुजर रही है, दिन पे दिन गुजरे जा रहे हैं, सुबह हो रही है और शाम हो रही है, हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारे पास फालतू वेस्ट का टाइम करने के लिए इतना है कि पैसे से ज्यादा हम टाइम को वेस्ट करते हैं। पैसा तो वेस्ट करते ही हैं, लेकिन टाइम उससे भी ज्यादा वेस्ट करते हैं, और हमें कोई परवाह नहीं होती। कैसे हो सकता है? हमें आखिरत का यकीन है और हम बोलते भी हमें यकीन है, लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी गुजर रही हो, नहीं हो सकता। जरा और तो करके देखें, कहीं यकीन में कोई कोई आलूदगी तो नहीं आ गई, कोई शक तो नहीं हो गया, कहीं भुला तो नहीं दिया शैतान ने हमें? कैसे यकीन करने वाले हो कि परवाह ही नहीं हो रही, और लम्हों की कोई कदरों कीमत ही नहीं है, और जिंदगी हाथ से फिसले जा रही है, और अगले लम्हे का भी नहीं पता है कि कल का दिन जमीन के ऊपर है कि कब्र के अंदर है। फिर भी मजे से इट्स ओके, कल कर लेंगे, अभी हमारे पास कहाँ टाइम है ये कुरान पढ़ने का, सीखने का, और अमल करना तो बहुत ही दूर की बात है। अभी तो इस फर्स्ट स्टेप पे भी नहीं हम आए कि हम सीख ही लें, हमारे पास कहाँ टाइम है? क्योंकि तो शायद हम 100 ईयर्स तो लिखवा के आए ही होंगे, जो गारंटीड है हमारे पास, इसलिए हम कह देते हैं देखें अभी नहीं टाइम है, 2 साल बाद हमसे पूछेगा, 4 साल बाद पूछेगा, अच्छा फलां वक्त में पूछेगा, अच्छा ये हो जाए तो पूछेगा, क्योंकि यकीन नहीं है ना कि पता नहीं कल रहे या ना रहे। अगर कल खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गई मेरी जिंदगी की, कल मेरा मामला उठा दिया गया, तो ये जितने मेरे मसाइल हैं, जितनी मेरी ये ख्वाहिशात हैं, या जितनी मेरी ये भाग दौड़े हैं, या ये जो मेरे उछल कूद है, या ये जो भी मैं ये इस वक्त कर रही हूँ, इनमें से एक चीज भी नहीं है जिसका ना मुझसे सवाल होना है और ना मुझसे इसके लिए कोई कोई फायदा होना। अल्लाह अकबर, तो आखरत का यकीन होगा ना तो फिर नेकियां करनी भी आसान हो जाएंगी, फिर गुनाहों को छोड़ना भी आसान होगा, फिर बहुत कुछ इंसान थोड़े वक्त में कर पाता है। और आखरत का यकीन ना हो तो दिन गुजरते जाते हैं, और पीछे मुड़ के देखें तो आज तक जिंदगी इतनी जाया कर दी और कुछ भी ना कमाएगी। उलाइका, ये लोग हैं फिर जिनके अंदर ये छह क्वालिटीज आ जाए ना, आला हुदन में रब्बी, आला ऊपर, अपॉन हुदन हिदायत के, मिन से रब्बी रब, हिम उनके। अब हिम वही है जो पहले रजक ना होम था ना, होम और हिम एक ही बात है, ठीक है। अब वहां पे हमने कहा उनको, तो यहाँ पे है अपने रब की तरफ से हिम, अब आया इसम के साथ, तो अपने का आ गया माना, यानी उनके रब, मतलब तो ये है कि उनके, देयर, देयर का माना, लेकिन हम उर्दू में उसको अपने कह देते हैं, तो है असल में माना उनके रब की तरफ से, तो ये यानी उनके रब की तरफ से वो हिदायत पर है, यही लोग हैं। उलाय का जो है ये भी इसम इशारा है, और ये भी इसम इशारा बईद का है। जालिका जो है ना वो वाहिद का है, और उलाय का जमा के लिए, यानी आप जमा बहुत बहुत सारे लोग हैं ना उनकी तरफ इशारा करते हैं, तो फिर उलाय का कहेंगे, और एक चीज है तो फिर जालिका। अच्छा, अब उलाय का यही लोग हैं, यही लोग तो असल में तो दूर के लिए कह रहे हैं, उर्दू में तो हम यही लोग कहते हैं, लेकिन दोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब क्या मतलब, इसका मतलब वो है, वो आपको दिखाया जा रहा है, वो है वो, यानी तुम्हें वहां तक पहुंचना है, अभी नहीं तुम पहुंचे हो, तुम्हें वहां तक पहुंचना है, वो आपको दिखाया जा रहा है, वो सफर ये तुमने तय करना है। ये ना सोच के बैठो हाँ हम तो ठीक ही हैं, ये खूबियां अपने अंदर पैदा करनी है। और ये आला हुदन है, आला मतलब क्या है, ये जैसे ऐसा लगता है हुदन एक को सवारी है उसके ऊपर बैठे हैं, ये दीज आर अपॉन गाइडेंस, और गाइडेंस मेरे रब भी हैं, उनके रब की तरफ से, इसका मतलब गाइडेंस होती वही है जो रब की तरफ से होती है, बाकी आप कहें मैं यहाँ से हिदायत पाती, मैंने फलाने की बुक पढ़ ली, मैंने उसकी, मुझे बड़ी जिंदगी में गाइडेंस मिल गई है, जिंदगी को कामयाबी से कैसे गुजारना है, असल गाइडेंस वही है जो रब गाइड करे, ठीक है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हिदायत वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है, तो ये हैं वो हिदायत याफ्ता लोग। अब पहले कहा गया हुदन चाहिए मुत्तकीन को ही हिदायत मिलेगी, और मुत्तकीन को ही कहा गया कि यही लोग जिनमें ये क्वालिटीज है वो ही है हिदायत पर, नहीं है ये हिदायत पा लेंगे। अब देखिए, अब हम कह रहे हैं एक बात आपने सोची, हम कह रहे हैं कि हम हिदायत हमें पानी है, और ये कहा जा रहा है कि हिदायत के लिए ही तो सवाल हम कर रहे हैं, हिदायत ही तो हमें चाहिए, और रास्ता वो चाहिए जो हिदायत का है, और ये कहा जा रहा है हिदायत पर हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से ऑलरेडी। तो देखिए, जब आपने हिदायत पानी है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था इहदिनास सिरातल मुस्तकीम में कि हर कोई मांग रहा है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मांग रहे हैं, वो तो पहले ही हिदायत पर हैं, वो तो हादी। हिदायत एक आपके पास है, और हिदायत के आगे से आगे से आगे मरहले हैं, हिदायत एक स्टेगनेंट चीज नहीं कि बस आपने पा ली तो बस ये बस काफी होगा, अब इससे आगे बढ़ना है, हिदायत के दर्जे हैं आगे से आगे, और आपके पास थोड़ी सी हिदायत होनी चाहिए और हिदायत पाने के लिए, जब आपके पास ये होगी उलाय का अलग आला हुदम में रबी, तो तभी आप आगे कुरान से हिदायत पा सकते, फिर आप मुत्तकीन में होंगे, इतनी सी हिदायत का सामान आप लेकर आएंगे। जैसे कि आप कहते हैं मैंने पैसा बनाना है, अब आप स्टॉक मार्केट चलेगा, वो आपको कहते हैं आप पैसे दें, आप कहते हैं पैसे क्यों मैं दूं, भाई मैं तो पैसे बनाने के लिए आई हूं, तो आप मुझे मेरे से पैसे मांग रहे हो, वो कहते हैं नहीं पहले आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई होंगे ना, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ लेकर आते हैं फिर वो आगे बढ़ती है, इस तरह आपको तकवा का, आपके पास इतना तकवा होना चाहिए आप वो लेकर जाएंगे तो फिर आगे और आपको हिदायत मिलेगी, इतनी आपके पास हिदायत की पूंजी तक, जो मुत्तकी है उसके पास इतनी हिदायत की पूंजी होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट पहले उसके पास है, फिर और उसको हिदायत मिलती जाएगी, ये लोग हैं हिदायत पर मेरा प्रेम, वह उलाइका, और यही लोग हैं हुम, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया हुम यूकिनून में भी हुम ये स्टैंड अलोन प्रोनाउन है, अल मुफ्लिहून, मुफ्लिह फलाह पाने वाले हैं, हम वैसे फलाह उर्दू में भी बोलते हैं, मुफ्लिह वो जो फलाह पा गया, फलाह पाने वाला, और मुफ्लिहून वनु वो जो फलाह पाने वाले हैं, तो यही लोग फलाह पाने वाले, नहीं ये कामयाब होने वाले यही लोग हैं, कामयाबी, इनको ही कामयाबी मिलेगी। अब हम कहेंगे अच्छा बस इतनी सी कामों से कामयाबी मिल जाती तो ठीक है, बस ये तो कोई ज्यादा नहीं है। अब आपको कई जगह पे कुरान पाक में ये पता चलेगा कि कुछ क्वालिटीज बताई जाएंगी और फिर बताया जाएगा कि ये कामयाबी है इसके अंदर। अब हम कहेंगे इसके अंदर तो हज है ही नहीं, इसके अंदर तो देखो पर्दा है ही नहीं, इसके अंदर तो रोजा है ही नहीं, इसके अंदर तो जकात ही नहीं है। तो जकात तो रजकना हम यनफिकहू में आ गई, लेकिन चलो हज नहीं है या कोई और चीज नहीं है तो बस इतना ही करने से हो गया। असल में बात यह है जब आपको ऐसी क्वालिटीज बताई जाएं और उसके बाद ये बताया जाए तो ये मतलब नहीं कि बस यही है। बात ये है कि जब कोई ये करेगा ना खुद ब खुद वो बाकी भी सारा कुछ करेगा। इसलिए कि देखिए जब वो गैब पे ईमान ले आया, जब वो अल्लाह ताला पे ईमान ले आया, आखरत पे ईमान ले आया, उस पर यकीन उसको आ गया, गैब में भी आखरत पे ईमान है और बिल आखरत यूकिनून में भी है, और फिर जब वो अल्लाह की किताब पे ईमान लेकर आया, हदीस पे ईमान लेकर आया, तो मान जाने का मतलब यही है ना कि उसके ऊपर अमल भी करना चाह रहा है। उसको मान गया, मैंने आपको बताया मानना ईमान का मतलब ही क्या होता है कि पहले दिल से भी माना, जुबान से भी इकरार किया और अमल में भी लेकर आया, अमल बिल जवारे भी किया। जिसने मान लिया था कि बाहर आग लगी हुई, वो उठ के भागा था, तो फिर इसका मतलब कि वो सारी चीजों को मान रहा है। अब इसका मतलब ये हरगिज ना ले ले कोई कि इसमें तो इन चीजों का तो जिक्र है ही नहीं, इसलिए लिहाजा किसी और करने की चीज को जरूरत है ही नहीं और हम बस कामयाब हो गए। ठीक है, जहां पे भी आपको ऐसा मिले वहां पे समझ जाया करें कि जब वो ये काम करेगा तो इसका मतलब होगा कि वो बाकी सारे कामों को करने लग गया, उसी के अंदर माना मौजूद होता है। तो मुफलिह का माना असल में फलाह कहते हैं जो हल चलाने को, जमीन को खोद के और उसको उसके अंदर उसको तैयार करना उसके लिए। जैसे हम कहते हैं ना किसान जो होता है, किसान कैसे जमीन को टिल करता है उसके साथ ना, टिलर के साथ जो ट्रैक्टर चलाता है उसके साथ। तो फलाह का माना असल में होता है फाड़ना और काटना, किसान को फलाह कहते हैं इसलिए कि वो जमीन को फाड़ रहा है और उसको उसके अंदर फिर बीज डालता है। अब देखें उससे कामयाबी का हमें एक माना दिया गया कैसे। अब वो देखे वो सारा साल मेहनत करता है और उसके बाद एक दिन उसकी फसल कट के तैयार होती है और उसको उसका फल मिलता है। इसी से हमें इस चीज की तरफ एक इशारा मिलता है कि जब आप भी सारी जिंदगी मेहनत करोगे तो फिर नतीजा पाओगे। आपको मेहनत करनी होगी, लग के करनी होगी। ये जो लोग चाहते हैं कि एक दिन में उनको नतीजा मिल जाए, और 4 दिन में अभी कोई हमें जन्नत तो मिल नहीं रही, अभी दुनिया में हमें तो कोई ऐसा नहीं मिल रहा, हमें तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, नहीं, सब्र के साथ चलते रहना पड़ेगा। जैसे कि एक किसान सारा साल मेहनत करके एंड में जाके उसको उसका रिजल्ट मिलता है, इसी तरह तुम्हें मिलेगी। और इसके लिए मेहनत जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है। जैसे किसान है वो बीज भी डालता है, पानी भी देता है, हल भी चलाता है, क्या क्या मेहनत करता है, फिर पौधा उग भी जाता है तो उसके साथ कितनी उसकी मेहनत होती है, दिन रात मेहनत करता है तो तब फसल मिलती, और रोज रोज नहीं होती वो, एंड ऑफ द ईयर में जाके उसके लिए होती। इसी तरह इंसान तुम कोशिशें मेहनतें करते रहोगे, नेकियों में दौड़ते रहोगे तो आखिर में जाके ये नतीजा पाओगे कि तुम्हें कामयाबी मिलेगी, और ये इंसान की मंजिल है। और इसी के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज आयतें, जब आपसे पूछा गया कि बाज आयतें तो हमें ढारस देती हैं और उम्मीद कराती हैं और बाज आयतें हमारी कमर तोड़ देती हैं और करीब होता है कि हम ना उम्मीद हो जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी की पहचान साफ साफ बता देता हूँ। फिर आपने अलिफ लाम मीम से लेके मुफ्लिहून तक पढ़ के फरमाया ये लोग हैं जो जन्नती हैं। सहाबा ने खुश होकर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि हम इन्हीं में से होंगे। तो यहाँ तक हमारा सबक था। एक बात इसके अंदर और नोट कर लीजिए जो आयत नंबर 4 से मुतल्लिक थी, कि आपने सोचा कभी कि यहाँ पे ये आया है कि ईमान रखते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और ईमान रखते हैं उस पर जो आपसे पहले नाजिल हुआ। ये नहीं आया कि ईमान रखते हैं उस पर जो आपके बाद नाजिल हुआ। आप देखें ना उन चीजों के ऊपर भी ईमान को का तकाजा किया गया, उन चीजों पे भी ईमान लाने के लिए कहा गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुए, हालांकि वो तो गुम भी हो चुके हैं, कई सहीफों का तो हमें पता ही नहीं, सूरह इब्राहिम कहाँ है हमें क्या पता। अच्छा, इसी तरह ये बुक्स भी तहरीफ उनकी अंदर हो चुकी है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है, फिर भी कहा गया ईमान लाओ उस पर, जो कि अब है ही नहीं, दुनिया में कहीं मिल भी नहीं रहा, और उसके ऊपर अमल करने की भी नहीं जरूरत है अब, फिर भी कहा गया उनके ऊपर ईमान है। तो आपका मतलब है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ आना होता तो क्या ना कहा जाता कि जो आपके बाद आएगा उसके ऊपर भी ईमान लाना। इससे पता चलता है, बारीक नुक्ता है लेकिन इससे पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर वही आती है, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, चाहे वो कोई भी है, मुझ पे झूठ, मुझ पे वही आती है, मेरे पास फरिश्ता आता है, मैं मेहदी हूं या मैं ईसा हूं या मैं मिर्जा कादियानी, मैं आपको मैं अहमद हूं, या मैं को जो भी कहे, वो कितने ही दलायल देने की कोशिश करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आके वही का सिलसिला खत्म हो चुका, जो आपके ऊपर नाजिल हुआ वहां तक ही हम ईमान लाते, उसके आगे किसी के ऊपर ईमान नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पर रखे, अल्लाह ताला हमें मुफ्लिहून में शामिल फरमाए, या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो आखरत पर यकीन रखते हो, और जो तेरे नबी पर उतरा और जो उनसे पहले नाजिल हुआ, अल्लाह हमें उसके ऊपर पक्का ईमान रखने वाला बना दे, और मुत्तकीन में हमें शामिल फरमा, और मुत्तकीन में ही हमें उठाना। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون